आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिकी सरकार की मांग के अनुरूप रक्षा खर्च बढ़ाने से इनकार कर दिया है, जबकि नीदरलैंड्स में हुई बैठक में नाटो देशों ने इसे स्वीकार कर लिया है। नाटो देशों ने रक्षा खर्च बढ़ाने की अमेरिका की मांग को मान लिया है। ये वही मांग है जिससे ऑस्ट्रेलिया पहले ही परिचित है। इस वर्ष की शुरुआत में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने ये मांग ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स के समक्ष रखी थी, लेकिन उस समय श्री माल्स ने इस मांग को ठुकरा दिया था। अब उनका कहना है कि नीदरलैंड में हुई नाटो सम्मेलन की घटनाओं से सरकार का रुख नहीं बदला है। वे कहते हैं कि मौजूदा सरकार पहले ही रक्षा खर्च में पर्याप्त वृद्धि कर चुकी है।
Obviously a very significant decision has been made here in relation to European defence spending, and that is fundamentally a matter for NATO. We've gone through our own process of assessing our strategic landscape, assessing the threats that exist there, and the kind of defence force we need to build in order to meet those threats, to meet the strategic moment, and then to resource that. And what that has seen is the biggest peacetime increase in Australian defence spending that we have seen in our history. Now, that is a story which is understood here.
रक्षा मंत्री माल्स जिन बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, उसके तहत ऑस्ट्रेलिया अपने रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के 2% से बढ़ाकर 2033-2034 के वित्तीय वर्ष तक 2.3% तक ले जाएगा। वहीं अमेरिका ने इस प्रतिबद्धता को 3.5% तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ विशेषज्ञ इसे 3% तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष के रक्षा प्रवक्ता एंगस टेलर ने कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं बताया है, लेकिन उनका कहना है कि मौजूदा सरकार के तहत रक्षा खर्च अब भी अपर्याप्त है।
Well, there's a whole lot of areas in the Defence Strategic Review that are clearly underfunded. Our drone and counter-drone technologies, as the Leader of the Opposition, Susan, laid out yesterday, making sure that the Henderson sub-facility is properly funded. The hardening of our northern facilities at a time like this is incredibly important. Making sure we've got domestic missile manufacturing capability, as the government said they will do, but there's no sign of making progress on this. All of these are areas that have to be properly funded, alongside AUKUS, the submarines, and the frigates. I mean, so there is no shortage of things that need to be properly executed and properly funded, and they're not being right now under this government.
Matthew Sussex, Canberra-sthit Australian National University ke Strategic and Defence Studies Centre se jude hain. Unka kehna hai ki Hague mein hue sammelan ki ghatnaein sarkar ke rukh par ab aur dabav dalengi. Halanki, iske saath ek shart judi hai.
And so this does, I think, also increase the pressure on Australia to increase its defence spending. Whether it does or not is something that's still, I think, a bit of an open question. And certainly, I think there's no harm in waiting until what the American review into the AUKUS program actually says, a 30-day review that is due to report relatively soon.
NATO बैठक के अन्य हिस्सों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इंडो पैसिफिक साझेदारों की संयुक्त बैठक में शामिल नहीं हुए, जबकि वे वहां मौजूद थे। मंत्री माल्स का कहना है कि उनकी गैर मौजूदगी से बैठकों की गंभीरता पर कोई असर नहीं पड़ा।
No, it was a really important meeting with the Secretary General, and you know, we reaffirmed in the meeting how important the two theatres are to each other. I mean, the point I made was that in Japan, in Korea, and in New Zealand, we have three countries which are deeply important in terms of Australia's strategic interests in respect of all of them. We really are at a high point of our bilateral relationship, and we are working increasingly as a team. But we all see how significantly what's playing out in Europe is influencing the Indo-Pacific.
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इन बैठकों में शामिल ना होना इस धारणा को और बल देता है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार उनसे मुलाकात नहीं कर पा रही है, खासकर तब जब कनाडा में हुए G7 सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी की उनसे तय बैठक रद्द कर दी गई थी। सुरक्षा विशेषज्ञ दलबीर अहलावत मानते हैं कि हालांकि ये एक सुनहरा अवसर था जो ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकल गया, लेकिन इससे उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है जितना इसे समझा जा रहा है।
सर्टेनली एक जो अपनापन था वो नहीं, लेकिन इसमें ऑस्ट्रेलिया अकेला नहीं है। यूक्रेन की मीटिंग भी थी, भारत के प्रधानमंत्री की भी मीटिंग थी उनसे, और देशों की मीटिंग भी कैंसिल हुई है। इम्पैक्ट ऐसा है कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, ये मोस्टली जो चीजें होती है डिप्लोमेटिक रिलेशंस के थ्रू ही होती हैं, जो नेगोशिएशंस बिहाइंड द कर्टेन होती है। लीडरशिप का क्या है कि जब सब कुछ हो जाता है तो वो एग्रीमेंट साइन करते हैं एज ए फॉर्मेलिटी, एज ए प्रोटोकॉल। तो उसमें क्या है कि और अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जिसमें कि टाइम आएगा जबकि दोनों लीडर्स मिलेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर और यूएस प्रेसिडेंट, और उस टाइम पे शायद फर्दर अच्छा क्लेरिफिकेशन मिलेगा, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स कंटिन्यू रहते हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुए 5 महीने से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी ऑस्ट्रेलियाई मंत्री से उनसे आमने सामने की मुलाकात नहीं हुई है। ये बात घरेलू राजनीतिक स्तर पर सरकार को नुकसान पहुंचाती है या नहीं, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन विपक्ष इस स्थिति का लाभ उठाने को तैयार है। विपक्ष रक्षा प्रवक्ता एंगस टेलर का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अमेरिका के तात्कालिक राष्ट्रपति, चाहे वे कोई भी हो, से व्यक्तिगत संबंध विकसित करने में समय दें।
Right now it seems that the Prime Minister is better able to get a meeting with the President of China than the President of the United States. The United States has fought with us in every major war. And that alliance is incredibly important to this country. Regardless of who is leading the United States, that alliance really matters. The Prime Minister needs to get serious about the personal relationship that's necessary to nurture that alliance.
NATO बैठक में कुछ प्रस्ताव ऐसे भी थे जिन पर ऑस्ट्रेलिया ने सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया एक निगरानी विमान और 100 रक्षा कर्मियों को 3 महीनों के लिए पोलैंड भेजेगा। ये तैनाती नवंबर में समाप्त होगी। इसका उद्देश्य यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति मार्गों की निगरानी सुनिश्चित करना है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने रशिया की प्रमुख औद्योगिक इकाइयों से जुड़े 37 व्यक्तियों और 7 वित्तीय संस्थानों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें वे लोग और संस्थाएं भी शामिल हैं जिन्हें सरकार रूसी प्रचारक प्रसारक यानी प्रोपेगेंडा फैलाने वाला बताती है। इसके अलावा श्री माल्स ने नाटो सपोर्ट एंड प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे गैर लड़ाकू गतिविधियों में सहयोग बढ़ेगा, जैसे कि लॉजिस्टिक्स और क्षमता अधिग्रहण। अब ये देखना रहता है कि सुरक्षा और रक्षा की इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों का घरेलू राजनीति पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि मौजूदा सरकार देश की सुरक्षा को लेकर उतनी सजग नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए, और एल्बनीजी सरकार इस आरोप का लगातार खंडन करती रही है। SBS न्यूज से सुनील अवस्थी की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी से आपके लिए प्रस्तुत किया वृषाली जैन ने।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।